Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा, और मैं लेके आई हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी किताब चरित्रहीन। लेकिन बाहर आते ही रात भर की जमी हुई सारी ग्लानी की जलन जैसे इंद्रजाल की तरह उड़ गई। आंधी ने अभी जोर नहीं पकड़ा था, तो भी सागर के जल का ये कैसा विराट रूप है। सामने के सीमाहीन विस्तार का जो कोई स्थान उसकी नज़रों में पड़ा, वही उसकी सारी अज्ञता के बाहर था। पास ही एक कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठकर वो एक टक समंदर की ओर ताकने लगा। हृदय के भीतर न जाने कैसा होने लगा। उसका अस्पष्ट भाव से अनुभव करने के सिवा बुद्धिपूर्वक हृदयंगम करने की शक्ति उसमें न थी। जहाज़ के ऊपर उद्दाम लहरें सफ़ेद फेने का किरीट सिर पर पहनकर उन्मत्त की तरह फांदी पड़ रही थीं, फिर चूर चूर होकर न जाने कहाँ लुप्त हो जाती थीं, फिर उठकर दौड़ती थीं, टकराती थीं और गायब हो जाती थीं। इसी तरह का आघात अभिघात का अद्भुत खेल दिवाकर मुग्ध नेत्रों से आत्मविस्मृत होकर देखने लगा। ऊपर पूर्व दिशा के आकाश में दिगंत से काले भूरे बादल पहाड़ों की तरह जमा होकर उठ रहे थे, और उनके पीछे बाल सूर्य निकला कि नहीं, एक किरण भी इसकी खबर नीचे ले आने की राह नहीं पा रही थी। क्षण भर बाद ही डेक के ऊपर खलासी लोग व्यस्त भाव से इधर उधर आने जाने लगे, और ऊपर कप्तान का घंटा बार बार जोर से बजने लगा। आकाश के बादलों और सागर की लहरों ने यह खबर कि आंधी का वेग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और भविष्य में और भी बढ़ेगा, ब्रिज पर खड़े कप्तान से लेकर नीचे की कामिनी वैष्णवी तक सबको सुस्पष्ट घोषणा के साथ बतला दी। इसी समय एक खलासी ने आकर कहा, बाबूजी, पानी बरसने में अब अधिक देर नहीं है, यहाँ इस आंधी पानी में बैठकर क्यों कष्ट पाएंगे, भीतर कैबिन में जाइए, देखिए वहाँ क्या हो रहा है। दिवाकर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ वहाँ? खलासी चटगांव का रहने वाला मुसलमान था। उसने हंसते चेहरे से पूर्व बंगाली की दुर्बोध्य बंगला में कहा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहाज़ बहुत झोंके खा रहा है कि नहीं, इसी से कहता हूँ बाबूजी, वहाँ जाकर देखिए औरतों का क्या हाल है, इतने झोंके बर्दाश्त करना बहुत कठिन है। दिवाकर ने उठकर खड़े होते ही समझ लिया कि खलासी का कहना बिल्कुल सच है, वो गिरा पड़ता था। खलासी ने पकड़ लिया और कहा, चलिए बाबू, आपको पहुँचा आऊँ। उसकी सहायता से किसी तरह दिवाकर कैबिन के द्वार तक पहुँचा। दरवाज़ा ठेल कर भीतर जाकर देखा, किरणमयी नीचे का बिछौना छोड़कर पास की लोहे की बेंच के ऊपर पेट के बल पड़ी हुई उसके एक सिरे को जोर से पकड़े हुए है। दिवाकर धीरे धीरे जाकर उसके सिरहाने बैठ गया, बोला, कष्ट हो रहा है भाभी। किरणमयी कुछ नहीं बोली, न सिर उठाया, केवल दिवाकर की गोद में अपना हाथ रखकर चुपचाप पड़ी रही। जहाज़ उलटने पलटने लगा, बाहर क्रुद्ध पवन गों गों सों सों करके चीखने लगा, और उत्ताल तरंगों का जो खेल अभी दिवाकर बाहर देख आया था, उसी के उछलते हुए जलकण वेग से छोटी सी खिड़की के शीशे पर बारंबार पछाड़ खा खा कर गिरने लगे। दिवाकर ने देखा, इस छोटी सी कोठरी से इस समय भी अंधकार अच्छी तरह गया नहीं है, और नीचे रात का बिछौना वैसा ही बिछा है। पल भर में ही उसे बीती हुई रात की सारी याद ने चक्की के पाट की तरह दबा लिया। उसके सिर में चक्कर सा आ गया, और वहाँ बैठे रहने की सारी शक्ति जैसे कोई उसके शरीर से खींच ले रहा है, ये स्पष्ट अनुभव करके दिवाकर वहीं उस संकरी बेंच के ऊपर ही किरणमयी के सिर के पास सिर रखकर मूर्छित की तरह लेट गया। किरणमयी ने उसके सिर को हाथ से सहलाते हुए कोमल स्वर में कहा, लेट क्यों गए, सिर में चक्कर आ रहा है? दिवाकर ने कहा, हाँ। किरणमयी ने क्षण भर चुप रहकर पूछा, अच्छा लल्ला, तूफान तो क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जहाज डूब जाएगा? दिवाकर ने कहा, ना। किरणमयी ने कहा, हाँ या ना, यही दो अक्षर तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। क्या तुम अदालत में गवाही दे रहे हो? ये कहकर वो बहुत देर तक चुप पड़ी रही। बहुत देर के बाद धीरे से बोली, अगर डूबेगा नहीं तो भी इस तरह कितने दिन चलेगा? दिवाकर के कुछ उत्तर ना देते देखकर किरणमयी ने हाथ से उसका सिर हिलाकर कहा, सुन नहीं पा रहे हो क्या? दिवाकर ने कहा, सुन पा रहा हूँ, जितने दिन चल सके चले। किरणमयी ने कहा, उसके बाद? दिवाकर ने कहा, उसके बाद भी समुद्र में पानी रहेगा, गले में फंदा लगाने के लिए रस्सी भी मिल जाएगी, दोनों में से एक चीज़ छांट लेनी होगी। किरणमयी बहुत देर तक चुप पड़ी रही, फिर सहज स्वर में बोली, नहीं ये ना करो, घर लौट जाओ, तुम मर्द बच्चे हो, जाकर कुछ बनाकर कह देने से ही झंझट मिट जाएगा, बहुत मुमकिन है इसकी भी ज़रूरत ना पड़े, तुम्हारा अपना कोई आदमी इस बात को लेकर आंदोलन नहीं खड़ा करेगा। दिवाकर चुप हो रहा, ऐसा प्रस्ताव चाहे जितना लुभाने वाला क्यों ना हो, वो अपने मन में ग्रहण नहीं कर सका। बहुत देर चुप रहने के बाद बोला, और तुम? किरणमयी ने पहले ही की तरह सहज शांत स्वर में कहा, मैं जहाँ जा रही हूँ वहीं रह जाना होगा। दिवाकर के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, बोला, किस तरह रह जाओगी भाभी, वहाँ तुम्हारा कौन है? कोई नहीं। तो फिर? तो भी रह जाना होगा। दिवाकर उत्कंठा के मारे उठ बैठा, बोला, ज़रा स्पष्ट करके ही बताओ ना भाभी, कहती हो कोई नहीं है तो फिर कैसे रह जाओगी, समझ में मेरी तो कुछ नहीं आता, तुम क्या वहाँ अकेली रहोगी? किरणमयी हंसी, वो हंसी दिवाकर न देख पाया, देख पाता तो चौंक जाता। कुछ देर चुप रहकर किरणमयी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं लल्ला, अकेली नहीं रह सकूंगी, मेरी उम्र वैसी नहीं है, लेकिन तुम्हारे आगे उन सब बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसने दिवाकर का दाहिना हाथ सहसा अपने मुख के ऊपर खींच कर रख लिया और अत्यंत व्यथित स्वर में कहा, लेकिन मैंने तुमको भी व्यर्थ कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ लल्ला। दिवाकर फिर अवसन्न की तरह लेट रहा। सब बातें तो उसने निसंशय रूप से नहीं समझ पाई, किंतु इतना समझ लिया कि घर लौटने की अंधकारमय राह के लिए जो आशा का दीपक घड़ी भर पहले ही उसने मूड की तरह जलाया था, उसे बुझा देने का समय आ गया है। दीपक बुझा अवश्य, लेकिन उसकी दुर्गंध फैलाने वाली भाप से दिवाकर का अंतःकरण एकदम भर गया। वो रुंधी हुई सांस और गहरी वेदना से एकदम खड़ा हो गया और फिर बैठ गया। फिर तीखे स्वर में पूछा, तुम क्या दिल लगी कर रही थी भाभी? मुँह चोर और लजीले दिवाकर की इस आकस्मिक उग्रता से किरणमयी चौंक उठी, बोली, कैसी दिल लगी लल्ला? घर लौट जाने की बात की, इस विद्रूप की क्या कुछ ज़रूरत थी? हंसी या व्यंग तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तो क्या ये सच है? सच तो है ही भाई, तो फिर ये भी सच है कि तुम अकेली रह जाओगी? हाँ ये भी सच है, और इसी से शायद आराकान जा रही हो, लेकिन किसके पास, किस तरह रहोगी? इसके उत्तर में किरणमयी ने केवल एक सांस छोड़ी। वो अच्छी तरह जानती और समझती थी उन दोनों का भागना दिवाकर के लिए कैसा अस्वाभाविक है और इसकी लज्जा उसके लिए कितनी दुस्सह है। और ये भी किरणमयी को अच्छी तरह मालूम था कि इस दारुण अवस्था संकट में पड़कर उसका मन कहाँ तक विकल हो गया है। दिवाकर को उसने प्यार भी नहीं किया, प्यार करना असंभव है, तो भी आश्चर्य की बात है कि उसी की परिपूर्ण उदासीनता से वो मन ही मन अब तक व्यथा ही पा रही थी। किंतु अभी जिस घड़ी दिवाकर ने रूखे स्वर और तीव्रतर प्रश्न से अपने भीतर की ईर्ष्या की ज्वाला एकदम स्पष्ट प्रकट कर दी, तब उसी घड़ी किरणमयी के हृदय की छिपी हुई वेदना हर्ष से हिल्लोलित हो उठी। इस पुलकित होने का और भी एक बड़ा कारण था। इसके पहले कच्ची बुद्धि का तरुण युवक अपने प्रथम यौवन की सौंदर्य तृष्णा में इस अद्भुत नारी के अलौकिक रूप के पान से जब तिल तिल करके आकृष्ट हो रहा था, तब किरणमयी ने उसे देखकर भी नहीं देखा, जानकर भी उसकी ओर भ्रूक्षेप नहीं किया। किस तरह यह मधुचक्र बन रहा था, कहाँ उसका मधु संचित हो रहा था, उधर निरतिशय अवज्ञा से उसने दृष्टिपात तक नहीं किया। किंतु आज जब खोंचा लगने से अकस्मात मधु टपक पड़ा, तब इस निर्वासन में जो आदमी उसका एकमात्र सहारा था, उसी के सयत्न संचित मधुचक्र के छिपे हुए शहद के भंडार पर किरणमयी ने अपनी अत्यंत सावधान दृष्टि लगा रखी। उसने मन ही मन हंसकर कहा, किसके पास, किस तरह रहूंगी, ये जानकर तुमको क्या लाभ होगा लल्ला? जब तुम लौट ही जाओगे, तब इस अनावश्यक कौतूहल की तो कोई सार्थकता नहीं है। दिवाकर कुछ देर तक स्थिर होकर बैठा रहा, फिर बोला, मैंने तो ये एक बार भी नहीं कहा कि लौट जाऊंगा, ये तो तुम्हारे मुंह की बात है, मेरी नहीं। किरणमयी ने कहा, ये ठीक है, लेकिन मेरे मुंह से भी तो तुम्हारे ही मन की बात निकली है, कहकर दिवाकर की ओर से तीव्र प्रतिवाद की प्रत्याशा से अपेक्षा करने लगी, किंतु कोई प्रतिवाद नहीं हुआ। किरणमयी उसे सोचने का मौका देकर धैर्य धरे रही। इसी तरह बहुत समय निकल गया। बाहर आंधी पानी के अविराम आक्रमण से जहाज की मेरु मज्जा कांपने लगी। खलासियों का स्पष्ट कोलाहल बीच बीच में स्पष्ट होने लगा। किरणमयी के धैर्य का बांध भी टूट जाने को हुआ, किंतु इस छोटी सी लकड़ी की कोठरी की निस्तब्धता वैसे ही बनी रही। किरणमयी को लेशमात्र संदेह नहीं रहा कि दिवाकर प्रतिवाद नहीं करेगा। तब उसने लंबी सांस लेकर धीरे से कहा, तो फिर क्या तुम्हारा लौट जाना ही तय रहा? दिवाकर ने कहा, ना। किरणमयी ने फिर प्रश्न नहीं किया। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ दिवाकर की गोद में रखकर चुपचाप स्थिर पड़ी रही।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।